रश्मि को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि नानी माँ ने अभी तक किसी से भी किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि सारी भागदौड़ वहां पर नानी माँ ही कर रही थी, और बड़े बड़े डॉक्टरों से ना जाने नानी माँ धीरे धीरे क्या बातें कर रही थीं। ये बातें सभी को बड़ी ही अजीब लग रही थीं, लेकिन नानी माँ के आगे किसी की भी नहीं चल रही थी। नानी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो घर की मुखिया बनकर अपनी बड़े होने की जिम्मेदारी निभा रही हों, और नानी माँ ने डॉक्टर से खुद ही सारी बातचीत की। अब कहीं ना कहीं सभी के मन में यही शंका पैदा हो रही थी कि आखिरकार नानी माँ को अचानक क्या हो गया है और वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हैं। नानी माँ ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। रश्मि भी पूरी तरह से डर सी गई थी कि आखिर मामला क्या है। अब जल्दी ही नानी माँ के कहने पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर सारी जरूरी चेकअप और ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर आए और आकर सीधे नानी माँ की ओर देखने लगे। वहीं आकाश, सुमित, राधिका, वंशिका, आस्था और अरमान सभी हैरानी से डॉक्टर को देखने लगे। तभी अरमान ने देखा कि डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन्हें घूरते हुए बोला, क्या बात है, आप लोग इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, बताइए हुआ क्या है। अरमान के पावरफुल आवाज और सख्त अंदाज से डॉक्टर थोड़ा घबरा गए, लेकिन तभी डॉक्टर तुरंत नानी माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, माताजी, आप तो सच में ग्रेट हैं। जो बातें हमें सारे अल्ट्रासाउंड और मेडिकल टेस्ट करने के बाद पता चली, आपको पहले ही कैसे पता चल गया। अगर आप वक्त रहते डॉक्टर रश्मि को यहाँ नहीं लाती तो हमें नहीं लगता कि हम माँ और बच्चे दोनों को बचा पाते। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, आकाश पूरी तरह से टूट सा गया और लड़खड़ा गया। तभी अरमान ने तुरंत अपनी मजबूत बाहों में आकाश को संभाल लिया। वहीं आस्था की आंखों में आंसू आ गईं, घबरा कर बोली, डॉक्टर हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। तभी डॉक्टर बोले, वो एक्चुअली कल रात ही डॉक्टर रश्मि के बच्चे ने पेट में ही बॉडी कर दी थी, जिसकी वजह से गंदा पानी धीरे धीरे बच्चे के शरीर में जा रहा था और रश्मि जी के पेट में इन्फेक्शन फैलने का खतरा था, लेकिन माता जी की पैनी नज़र ने इसे समय रहते पहचान लिया और आप लोग समय पर हॉस्पिटल आ गए। अब घबराने की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन हमें डॉक्टर रश्मि के लिए सिजेरियन करना पड़ा क्योंकि बच्चे की जान बचाने का यही एक रास्ता था। जैसे ही सबने सुना, सबका दिमाग जैसे सुन हो गया। वहीं वंशिका ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उसे अंदर से एक अलग ही तरह का गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने रश्मि को पहले चेक किया था, लेकिन इतनी बड़ी बात समझ नहीं पाई। अगर समय पर हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो ना जाने क्या बड़ा हादसा हो जाता। सभी को अपने अपने तरीके से बहुत बुरा लग रहा था। तभी नानी माँ ने राहत की सांस ली और आकाश को संभालते हुए बोली, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हमारी रश्मि बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तभी आकाश ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर हम बच्चे से कब मिल सकते हैं, बेबी कैसा है। डॉक्टर बोले, देखिए अभी हमने मिस्टर आकाश के बेटे को आईसीयू में रखा है, जैसे ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब तक आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सुनकर कहीं ना कहीं सभी ने राहत की सांस ली थी। तभी आहान उत्साहित होकर बोला, क्या बेटा हुआ है और बच्चा बिल्कुल ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। आकाश भाई अब बिल्कुल परेशान मत होइए, रश्मि दीदी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। आहान की बातों से माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। वहीं ध्रुव और वंशिका तुरंत नानी माँ के पास गए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, नानी माँ अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता, हमने भी रश्मि दीदी को चेक किया था लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आपकी नज़रों ने वो देख लिया जो हम नहीं देख पाए। सच में नानी माँ अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी अधूरी होती। सुनकर नानी माँ हल्की मुस्कुराई और बोली, आप लोग फिक्र मत करो, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता और हमारी रश्मि बिटिया भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं सुनकर सभी ने राहत की सांस ली थी। वहीं आकाश तो अभी भी डॉक्टर की कही हुई बातों को अपने दिल दिमाग में दोहरा रहा था। डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती, अगर आज रश्मि को हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो रश्मि की जान जा सकती थी। बस इसी ख्याल से आकाश के तन बदन में सिहरन दौड़ गई। भला अपनी रश्मि को इस हालत में कैसे देख सकता था। अचानक से उठा और सीधे नानी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। आकाश को इस तरह टूटते हुए देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। वहीं आस्था तो हॉस्पिटल में बने कान्हा जी के मंदिर में जाकर बैठ गई थी और उनका दिल से धन्यवाद करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर के घर से नाश्ता करने के बाद अब एंजल और अविनाश सिंघानिया मेंशन लौट आए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी दादाजी से उन्हें पता चला कि सभी लोग हॉस्पिटल गए हैं। सुनकर भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। कहीं ना कहीं अविनाश के मन में एक अजीब सी कसक पैदा हो गई थी आस्था और अरमान को लेकर, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से उसने अरमान को काफी ध्यान से नोटिस किया था। उसने सोचा कि उसे सही समय पर अरमान से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में आस्था को परेशान नहीं देखना चाहता था। इसी सोच के साथ अब अविनाश और एंजल सीधे हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। वहीं तब तक रौनक भी सोकर उठ चुकी थी। उसे भी सारी बातों का पता चल चुका था। उसे आहान ने फोन करके सब कुछ बता दिया गया था। भी हॉस्पिटल जाने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन आहान ने उसे मना करते हुए कहा, अभी नहीं, तुम घर पर ही रुको। वैसे भी प्रिंसेस अभी बहुत छोटी है, उसे इस हालत में हॉस्पिटल लाना ठीक नहीं होगा। और अंश भी यहीं है, उसका ध्यान रखने के लिए किसी का घर पर होना बहुत जरूरी है, आहान ने पूरी जिम्मेदारी वाले अंदाज में कहा। रौनक मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह मेरे लल्लू लाल, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो, काफी बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो। सुनकर आहान ने तुरंत अपनी टोन बदलते हुए कहा, अगर अपने लल्लू लाल पर इतना ही प्यार आ रहा है तो बता दो, मैं अभी आ जाता हूँ। वैसे भी तुम बाद में भी रश्मि भाभी और भतीजे से मिल सकती हो। उसके इस हल्के रोमांटिक अंदाज पर रौनक तुरंत बोली, बस बस ज्यादा रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मैं फोन रख रही हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। आहान उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, एक बच्चे की माँ बन गई है लेकिन अभी तक शर्माना नहीं गया इसका। वहीं दूसरी ओर आस्था जो कि अपने कान्हा जी का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं थी कि रश्मि और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तभी अरमान धीरे से उसके पास आया, उसने आस्था के कंधों को थामा और उसके पास ही बैठ गया। बड़े प्यार से आस्था के चेहरे को देखने लगा। आस्था ने आंखें बंद कर रखी थी, उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ। दृश्य देखकर अरमान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, बस उसे देखता ही रह गया। हवा के हल्के झोंकों से आस्था के बाल बार बार उसके गालों को छू रहे थे और अरमान उसकी सादगी और खूबसूरती में पूरी तरह खो गया था। ठीक उसी वक्त अविनाश और एंजल भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, कॉरिडोर से गुजर रहे थे जहां कान्हा जी का मंदिर था। जैसे ही उनकी नजर आस्था और अरमान पर पड़ी, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
लेकिन जिस तरह से अरमान पूरी जुनून और गहराई से आस्था को देख रहा था, कहीं न कहीं अविनाश को थोड़ा अजीब भी लगा। एंजल की ओर देखकर बोला, कभी कभी तो लगता है कि अरमान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। कितना प्यार करता है वो हमारी आस्था से, लेकिन कहीं उसका यही ज्यादा प्यार आस्था के लिए परेशानी ना बन जाए, बस यही सोचकर डर लगता है, कहते हुए उसने एंजल की ओर देखा। तभी एंजल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अबीर की बातों को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी अरमान आस्था की जिंदगी में तब से है जब हम उसकी जिंदगी में नहीं थे। आस्था ने उसके साथ हर पल बिताया है, उसे अच्छी तरह जानती और समझती है। मुझे नहीं लगता कि अरमान कभी भी आस्था को जानबूझकर तकलीफ देने के बारे में सोचेगा, उसे बहुत प्यार करता है। सुनकर अविनाश जल्दी से बोला, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं उसका भाई हूँ और बहन की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अब जल्दी ही अविनाश और एंजल आगे बढ़े। आस्था ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसकी नज़र सीधे अरमान पर गिरी और फिर उसने अविनाश और एंजल को एक साथ देखा। तुरंत खुशी से खड़ी हो गई और दोनों के गले लग गई, फिर बोली, आपको पता है रश्मि दीदी और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक है ना? नानी माँ ने वक्त रहते सब कुछ समझ लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हम तो बस कान्हा जी का ही धन्यवाद कर रहे थे, कहते हुए आस्था लगातार एंजल और अविनाश को रश्मि की हालत के बारे में बताने लगी। इस दौरान अविनाश की नज़रें बार बार अरमान पर ही टिकी हुई थी। वहीं अरमान आस्था के चेहरे पर आई खुशी की चमक को देख रहा था, जो अविनाश और एंजल से बात करते वक्त और भी बढ़ रही थी। उसे देखकर सच में अच्छा लग रहा था। तभी अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हमें सबके पास चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आइए मिस्टर सूर्यवंशी, कहते हुए अरमान ने अविनाश को अपने साथ चलने का इशारा किया। अविनाश भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं एंजल भी आगे बढ़कर नानी माँ और बाकी सबसे जाकर मिल गई। अभी फिलहाल रश्मि से मिलने की इजाज़त नहीं थी, अभी रिकवरी में थी और जब तक थोड़ा ठीक नहीं हो जाती तब तक किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। फिलहाल जैसे ही एंजल और अविनाश वहाँ पहुँचे, उन्होंने आकाश को ढांढस बंधाया, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब पूरा परिवार हॉस्पिटल में ही मौजूद था। तभी डॉक्टर ने सबको देखते हुए कहा, आप सबका इस तरह यहाँ रुकना ठीक नहीं है, रश्मि जी से कम 24 घंटे बाद ही मिल पाएंगे और बच्चे को भी अभी सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप में से कुछ लोग घर चले जाएं। यहाँ हम लोग हैं, हम रश्मि जी का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।